अभिवादन। आज हम अखंड ज्योति पत्रिका से पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के एक बहुत गहरे उद्बोधन पर बात कर रहे हैं
जी।
शीर्षक है, इंसान के अंदर का भगवान जगाएंगी प्रतिभावान विभूतियां। ये अप्रैल 74 का है, पर आज भी मतलब इसकी बातें कितनी सटीक लगती हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, पूज्य गुरुदेव ने उस समय जैसे एक बहुत अहम मोड़ की तरफ इशारा किया था।
हाँ।
कि मानव जाति एक चौराहे पर है।
हाँ।
एक रास्ता नीचे गिरने का, पतन का, दूसरा उत्थान का।
और ये सिर्फ मतलब बाहरी खतरों की बात नहीं थी, जैसे अणुबम वगैरह।
नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरी बात थी, नैतिक और आध्यात्मिक दिशा की। वो जो इच्छाएं होती है ना, पुत्रेष्णा, लोकेष्णा, वित्तेष्णा।
हाँ, मोह, यश, धन का लोभ
जी। इन सब के जाल से ऊपर उठने की जरूरत बताई उन्होंने। तो सवाल था कि ये पतन रोककर उठें कैसे,
और यहीं पर वो प्रतिभावान विभूतियों का विचार आता है ना।
हाँ बिल्कुल सही। गुरुदेव का मानना था कि समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें ईश्वर का एक विशेष अंश है, एक तरह की दिव्य चमक है।
चमक, प्रतिभा या कोई खास असर डालने की क्षमता।
जी, प्रतिभा, प्रभाव, गीता में भी तो जिक्र है ऐसे देवी संपदा वाले लोगों का। इन्हीं को गुरुदेव ने विभूति कहा।
अच्छा।
और काम ये है कि इन्हें पहचाना जाए और सही दिशा दी जाए।
लेकिन ये पहचानना, ये तो अपने आप में एक बड़ी चुनौती लगती है।
है तो।
गुरुदेव ने गांधी जी का उदाहरण दिया कि वो तो माहिर थे व्यक्ति को पहचानने में, पर एक आम कार्यकर्ता ये कैसे करे।
देखिए, सूक्ष्म दृष्टि तो चाहिए, पर प्रयास तो करना ही होगा। गुरुदेव ने कहा कि कार्यकर्ताओं को ये काम सौंपा गया है।
और पहचानने के बाद वो तराशने वाली बात भी थी, जैसे हीरे को तराशते हैं, उसमें तो कष्ट भी होता है।
हाँ बिल्कुल, तराशने का मतलब है उन्हें ऊंचे लक्ष्यों के लिए प्रेरित करना, और इसमें हाँ हो सकता है उन्हें व्यक्तिगत स्तर पर कुछ त्याग करना पड़े।
त्याग, जैसे राजा हरिश्चंद्र।
जी वैसा ही हो सकता है, उनके अपने लोगों को लगे कि ये तो नुकसान हो रहा है, पर मानवता के बड़े हित में वो जरूरी है। गुरुदेव का मानना था कि इन विभूतियों को जगाना ही होगा अगर युग बदलना है।
तो ये जो कार्यकर्ता है जिन्हें पूज्य गुरुदेव ने प्रतिनिधि कहा, उनका मुख्य काम क्या था फिर, सिर्फ संगठन चलाना।
नहीं नहीं, उससे कहीं बढ़कर उनका असली काम था ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को ढूंढना, 100 बार जाना पड़े तो भी जाएं।
अच्छा।
उनसे मिलें और उन्हें मानवता की सेवा के बड़े उद्देश्य से जोड़ें। ये एक तरह से आप समझें चाणक्य वाला काम था, चंद्रगुप्त को ढूंढना और तैयार करना,
सही व्यक्ति को सही मिशन से जोड़ना।
बिल्कुल।
अच्छा, मिशन की बात आई तो फिर साधन, पैसे की बात भी जरूर उठी होगी। पूज्य गुरुदेव ने धन की पवित्रता पर बहुत जोर दिया, क्यों? मतलब अगर कोई ज्यादा पैसा दे रहा है भले ही दबाव से, तो क्यों मना करना।
कारण बहुत गहरा था। उनका मानना था कि ये जो आध्यात्मिक लक्ष्य है ना, ये सिर्फ श्रद्धा, प्रेम और पवित्र भावना से दिए गए पैसे से ही पूरे हो सकते हैं, चाहे वो कमी क्यों ना हो। गलत तरीके से आया पैसा या दबाव से लिया गया धन, वो मिशन के तेज को ही खत्म कर देता है, गुरुदेव के अपने आध्यात्मिक तेज को, जिसे ब्रह्म वर्चस्व कहते हैं, उसे नुकसान पहुंचाता है।
मतलब नींव ही कमजोर हो जाती है।
बिल्कुल। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अपवित्र धन से बनी इमारत की ईंटें उसी पर गिरेंगी जो उसमें बैठेगा।
तो फिर साधन कैसे आए, रास्ता क्या था?
रास्ता बहुत ही रचनात्मक था। गुरुदेव ने कहा कि जो प्रभावशाली लोग हैं, धनवान लोग हैं, उन्हें सिर्फ दान देने के लिए मत कहो।
तो फिर
उन्हें प्रेरित करो कि वो अपने व्यवसाय को, अपने संसाधनों को ही अच्छी दिशा में मोड़े। जैसे मान लीजिए कोई प्रकाशक है।
हाँ।
तो वो गंदी किताबें छापने के बजाय चरित्र बनाने वाला साहित्य छापे, समाज को उठाने वाला साहित्य।
अच्छा, यानी अपने काम को ही मिशन का हिस्सा बना लें।
जी।
साहित्य और कला जैसे माध्यमों का इस्तेमाल सकारात्मक बदलाव के लिए हो।
गुरुदेव ने उस वक्त के अश्लील साहित्य और कला पर बहुत चिंता जताई थी।
हाँ, उन्होंने कहा था कि बच्चों और स्त्रियों में साहस, जीवट पैदा करने वाले साहित्य की बहुत कमी है।
बिल्कुल, ऐसा साहित्य जो इंसान के अंदर सोए हुए देवत्व को जगाए, प्रेरणा दे।
और यही बात कला पर भी लागू होती है, चित्र, सिनेमा वगैरह।
निश्चित रूप से, गंदे चित्र, भड़काऊ फिल्में, इनके असर की उन्होंने आलोचना की और कहा कि ऐसी कला बनाओ, ऐसी फिल्में बनाओ जो त्याग, बलिदान, सेवा दिखाएं।
जैसे?
जैसे ऋषि दधीची, शिवाजी, महाराणा प्रताप या हमारे महान संत महापुरुष, इनके जीवन को दिखाओ ताकि लोगों की रुचि बदले, अच्छी चीजों में मन लगे।
तो ये एक तरह से समाज की रुचि को परिष्कृत करने का प्रयास था।
हाँ बिल्कुल, नकारात्मक असर का मुकाबला सकारात्मकता से करना।
तो इन सब कोशिशों का, मतलब विभूतियों को खोजना, उन्हें दिशा देना, पवित्र साधनों का इस्तेमाल, साहित्य कला को सुधारना, इन सबका आखिरी मकसद क्या था?
मकसद बहुत ऊंचा और एकदम साफ था, धर्म और अध्यात्म के मंच का उपयोग करते हुए।
हाँ।
समाज की जो प्रतिभाशाली और साधन वाले लोग हैं, जिनके पास धन है, बुद्धि है, प्रभाव है, उनको साथ लेकर व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का और पूरी मानवता का उत्थान करना,
इंसान के अंदर दैवत्व जगाना
और धरती पर स्वर्ग उतारना, यही लक्ष्य था।
तो सार ये है कि समाज को बदलने के लिए सिर्फ कुछ लोग नहीं, बल्कि जो सबसे प्रतिभाशाली हैं, जो विभूतियां हैं, उन्हें पहचानना और सही दिशा में लगाना सबसे जरूरी है।
एकदम सही कहा। और ये काम श्रद्धा से होगा, पवित्र साधनों से होगा और साहित्य कला जैसे माध्यम अगर सही दिशा मिले तो इनमें समाज को बदलने की अद्भुत शक्ति है।
तो आज की चर्चा के बाद एक सवाल मन में रह जाता है, हमारे आसपास ऐसी कौन सी विभूतियां हो सकती हैं जिनमें वो खास चमक है
जी,
और उन्हें समाज के उत्थान की इस बड़े काम में जोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या भूमिका हो सकती है?
ये सोचने वाली बात है।
ओम शांति।